नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, प्रदेश में हो रहे राष्ट्रीय खेलों के आयोजन से उत्तराखंड का स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर सुदृढ़ हुआ है। राज्य में ग्रीष्मकाल के दौरान संभावित वनाग्नि की घटनाओं की रोकथाम को लेकर शासन ने अभी से तैयारियां शुरू की। प्रदेश के सभी 100 निकायों में निर्वाचित सदस्यों का शपथ ग्रहण 7 फरवरी को आयोजित किया जाएगा। कुमाऊं विश्वविद्यालय को केंद्र सरकार की मल्टी एजुकेशन रिसर्च यूनिवर्सिटी योजना के तहत विकसित किया जाएगा। और 38वें राष्ट्रीय खेलों में देश भर के खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन जारी। पदक तालिका में 28 स्वर्ण के साथ कर्नाटक शीर्ष पर बना हुआ है। प्रभात समाचार के साथ मैं नीता कांडपाल, और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रदेश में हो रहे राष्ट्रीय खेलों के माध्यम से राज्य का स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर सुदृढ़ बना हुआ है। उन्होंने कहा कि सभी आयोजन स्थलों में खिलाड़ियों और आगंतुकों को हर संभव सुविधा प्रदान की जा रही है। मुख्यमंत्री ने कल देर शाम हल्द्वानी स्थित गोलापार स्पोर्ट्स स्टेडियम में 38वें राष्ट्रीय खेलों की विभिन्न व्यवस्थाओं के निरीक्षण के दौरान ये बात कही। इस मौके पर उन्होंने स्टेडियम में उत्तराखंड और दिल्ली के मध्य खेले गए फुटबॉल मैच का उद्घाटन किया। उन्होंने खिलाड़ियों से मुलाकात कर उनका उत्साहवर्धन भी किया। इस बीच मुख्यमंत्री ने 14 फरवरी को हल्द्वानी में होने वाली राष्ट्रीय खेलों के समापन समारोह की तैयारियों का निरीक्षण कर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने समापन समारोह में अधिक से अधिक लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया। प्रदेश में ग्रीष्मकाल के दौरान संभावित वनाग्नि की घटनाओं की रोकथाम को लेकर शासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने देहरादून में आपदा प्रबंधन विभाग, राज्य एवं केंद्रीय एजेंसियों तथा सभी जिलाधिकारियों के साथ राज्य में वनाग्नि तथा भूकंप से संबंधित मॉकड्रिल की तैयारियों की समीक्षा की। मुख्य सचिव ने आपदा प्रबंधन विभाग को फायर वॉचर्स को प्रशिक्षित कर वनाग्नि संभावना से पहले ही तैनात करने के निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने वनाग्नि नियंत्रण में सामुदायिक सहभागिता को बढ़ाने के लिए अभी से प्रयास करने पर जोर दिया। उन्होंने विभिन्न योजनाओं के तहत चीड़ के पत्तों के निस्तारण को अभी से सुनिश्चित करने के निर्देश दिए, ताकि पिरूल के कारण संभावित वनाग्नि की घटनाओं पर पूरी तरह से नियंत्रण हो सके। प्रयागराज महाकुंभ में देश विदेश से पहुंचने वाले करोड़ों श्रद्धालुओं के लिए प्रशासन द्वारा स्वच्छ और शुद्ध पेयजल की व्यापक व्यवस्था की गई है। श्रद्धालुओं को स्वच्छ जल उपलब्ध कराने के लिए महाकुंभ मेला क्षेत्र में 233 वाटर एटीएम स्थापित किए गए हैं, जो 24 घंटे बिना किसी बाधा के कार्यरत हैं। इन वाटर एटीएम की सहायता से अब तक 40 लाख से अधिक श्रद्धालु शुद्ध आरओ जल प्राप्त कर चुके हैं और यह संख्या लगातार बढ़ रही है। प्रशासन द्वारा उठाए गए इन कदमों से न केवल श्रद्धालुओं को स्वच्छ जल उपलब्ध हो रहा है, बल्कि पर्यावरण संरक्षण और प्लास्टिक कचरे में कमी लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास किया गया है। इस पहल से महाकुंभ 2025 का आयोजन श्रद्धालुओं के लिए अधिक सुविधाजनक, सुरक्षित और पर्यावरण अनुकूल बन गया है, जिससे यह आयोजन एक ऐतिहासिक और अनुकरणीय उदाहरण बन गया है। प्रदेश के सभी 100 निकायों, नगरपालिका, नगर पंचायत के निर्वाचित अध्यक्षों और पार्षदों का शपथ ग्रहण समारोह 7 फरवरी तक आयोजित किया जाएगा। ये जानकारी देते हुए शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने बताया कि सभी निर्वाचित प्रतिनिधि अपने मुख्यालयों पर शपथ लेंगे। नगर विकास मंत्री ने सभी निर्वाचित महापौर, नगर पालिका अध्यक्षों और नगर पंचायत अध्यक्षों को भी बधाई दी। प्रदेश सरकार ने बताया कि 460 शेप काश्तकारों को वर्ष 2023-24 का बीमा क्लेम भुगतान कर दिया गया है। अब तक 32 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है और शेष प्रक्रिया गतिमान है। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने बताया कि उत्तरकाशी के सेब उत्पादक काश्तकारों ने 3 फरवरी को उनसे मुलाकात की और बताया कि बीमा कंपनी उनके क्लेम का भुगतान नहीं कर रही है। इस पर बीमा कंपनी को तत्काल भुगतान के निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि क्लेम में देरी पर संबंधित बीमा कंपनी के खिलाफ कमेटी गठित कर जाँच भी शुरू कर दी गई है।
ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं।
राज्य सरकार विरासत योजना के तहत नैनीताल के 60 गांवों को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करेगी। ये सभी बाखलियां वाले घर हैं। सरकार का कहना है कि इससे राज्य में पर्यटन को बढ़ावा मिलने के साथ ही स्थानीय लोगों को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे और पलायन रुकेगा। गौरतलब है कि स्थानीय लोगों के पलायन से नैनीताल जिले के 60 गांव वीरान हो गए हैं, जिसके बाद सरकार ने इन घरों को होम स्टे योजना में बदलने का फैसला किया है। जिले के मुख्य विकास अधिकारी अशोक कुमार पांडे ने होटल और होम स्टे संचालकों के साथ बैठक कर इस पर चर्चा की। मुख्य विकास अधिकारी ने जिला पर्यटन विभाग को जल्द योजना प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। कुमाऊं विश्वविद्यालय जल्द ही बहुविषयक शिक्षा और शोध विश्वविद्यालय के रूप में अपनी पहचान स्थापित करेगा। केंद्र सरकार के सहयोग से इस विश्वविद्यालय को उन्नत मॉडल के रूप में विकसित किया जा रहा है। ये जानकारी देते हुए कुमाऊं विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर दीवान रावत ने बताया कि विश्वविद्यालय में 100 करोड़ रूपये की लागत से 9 नए केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि नई शिक्षा नीति के तहत विश्वविद्यालय को मेरू यानी मल्टी एजुकेशन रिसर्च यूनिवर्सिटी के रूप में विकसित करने की योजना पर काम चल रहा है। विश्वविद्यालय नैनीताल से करीब 10 किलोमीटर दूर पटवाडांगर में नया परिसर विकसित कर रहा है। धनराशि स्वीकृत होने के बाद जल्द ही इसकी निविदाएं भी आमंत्रित की जाएंगी। और अब खबरें राष्ट्रीय खेलों से। 38वें राष्ट्रीय खेलों में देश भर के खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन जारी है। पदक तालिका में 28 स्वर्ण के साथ कर्नाटक शीर्ष पर, सर्विस बोर्ड 27 स्वर्ण लेकर दूसरे और मध्य प्रदेश 17 स्वर्ण के साथ तीसरे स्थान पर है। राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखंड के खिलाड़ियों का भी बेहतर प्रदर्शन जारी है। अब तक उत्तराखंड को 4 स्वर्ण, 14 रजत और 15 कांस्य समेत कुल 33 पदक मिले हैं। राष्ट्रीय खेलों के 9वें दिन रुद्रपुर स्टेडियम में ट्रैक साइकिलिंग में 4 प्रतियोगिताएं आयोजित की गई, जिसमें महिला वर्ग में टीम परशूट 4000 मीटर में हरियाणा ने गोल्ड जीता है, जबकि कैरिन डिस्टेंस 5 लेप में कर्नाटक को गोल्ड मिला। वहीं पुरुष वर्ग में टाइम ट्रायल 1000 मीटर में अंडमान निकोबार को गोल्ड मिला, जबकि टीम परशूट डिस्टेंस 4000 मीटर प्रतियोगिता के परिणाम आज जारी होंगे। टिहरी जिले के कोटी कॉलोनी में चल रही रोइंग स्पर्धा के अंतिम दिन मध्य प्रदेश ने 5 गोल्ड और 4 ब्रॉन्ज मेडल जीतकर पहला स्थान प्राप्त किया। टिहरी से हमारे सहयोगी ने बताया कि इस प्रतियोगिता में एसएससीबी ने 5 गोल्ड मेडल हासिल कर दूसरा स्थान हासिल किया।
टिहरी बांध की झील में 38वें राष्ट्रीय खेलों के तहत रोइंग प्रतियोगिता का 38वें दिन समापन हो गया है। इस प्रतियोगिता में मध्य प्रदेश ने 5 गोल्ड एवं 4 ब्रॉन्ज मेडल जीतकर पहला स्थान पाया है, जबकि एसएससीबी ने 5 गोल्ड मेडल हासिल किए हैं। हरियाणा ने 1 गोल्ड और 4 सिल्वर मेडल जीतकर तीसरा स्थान प्राप्त किया है। उत्तराखंड ने इस प्रतियोगिता में 2 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज मेडल जीतकर पांचवा स्थान हासिल किया है। इस प्रतियोगिता में उत्तराखंड की टीम से प्रतिभा करते हुए टिहरी जनपद के देवप्रयाग तहसील के गोसिल निवासी नवदीप सिंह पवार ने सिल्वर मेडल जीतकर टिहरी और उत्तराखंड का नाम रोशन किया है। इस प्रतियोगिता में आए प्रतिभागियों ने कहा कि टिहरी बांध की झील अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जल क्रीड़ा के लिए सबसे उपयुक्त है। जयप्रकाश कुकरेती, आकाशवाणी समाचार, टिहरी गढ़वा।
और अब एक नजर आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों पर। प्रदेश में आगामी चारधाम यात्रा को सभी समाचार पत्रों ने प्रमुखता से स्थान दिया है। दैनिक जागरण ने लिखा, भीड़ प्रबंधन के लिए चारधाम यात्रा में इस बार 60% ही ऑनलाइन पंजीकरण। इस खबर पर राष्ट्रीय सहारा लिखता है, चारधाम यात्रा ऑफलाइन व ऑनलाइन कोटा हुआ निर्धारित। 30 अप्रैल से होगा राज्य में चारधाम यात्रा का आगाज। राज्य में 18 फरवरी से प्रस्तावित बजट पर अमर उजाला लिखता है, 18 से 24 फरवरी के बीच जून में होगा बजट सत्र। दैनिक जागरण ने वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के हवाले से लिखा है, नया बजट राज्य की अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति के विकास की परिकल्पना को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। उद्योगों के अनुरूप बनेगा उच्च शिक्षा पाठ्यक्रम, इस शीर्षक के साथ दैनिक जागरण में लिखा है, देहरादून के बालावाला, श्रीनगर और पिथौरागढ़ में खोले जाएंगे 3 नए राजकीय महाविद्यालय। देहरादून में भू कानून उल्लंघन पर हिंदुस्तान ने लिखा है, दून में भू कानून के उल्लंघन पर 750 बीघा जमीन होगी जब्त। इस खबर पर हिंदुस्तान समाचार पत्र आगे लिखता है, जिलाधिकारी देहरादून ने सभी तहसीलों से भू कानून के उल्लंघन के मामले में कार्रवाई पर हर हफ्ते रिपोर्ट मांगी है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, प्रदेश में हो रहे राष्ट्रीय खेलों के आयोजन से उत्तराखंड का स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर सुदृढ़ हुआ है। राज्य में ग्रीष्मकाल के दौरान संभावित वनाग्नि की घटनाओं की रोकथाम को लेकर शासन ने अभी से तैयारियां शुरू की। प्रदेश के सभी 100 निकायों में निर्वाचित सदस्यों का शपथ ग्रहण 7 फरवरी को आयोजित किया जाएगा। कुमाऊं विश्वविद्यालय को केंद्र सरकार की मल्टी एजुकेशन रिसर्च यूनिवर्सिटी योजना के तहत विकसित किया जाएगा। और 38वें राष्ट्रीय खेलों में देश भर के खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन जारी, पदक तालिका में 28 स्वर्ण के साथ कर्नाटक शीर्ष पर बना हुआ है। इसके साथ ही समाचारों का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।